जयधवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 11
ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं वेदगवेदगवेदगं नवेदगं वेदगं तसंसिद्धं सिद्धं प्रणमीयशिरसा वोच्चं वेदगमाह्यारमहम्।
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। 68 यहाँ हम एक जीव की अपेक्षा अंतर की बात देख रहे थे। उत्तर प्रकृतियों में स्थान की बात हमने देखी थी, तो प्रकृति स्थान उदीरणा में हम एक जीव की अपेक्षा अंतर देख रहे थे, तो उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। मार्गणाओं में हम देख रहे थे तिर्यंचों की बात चल रही थी, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंचत्रिक में बात देखी थी, अब यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों की बात देखेंगे। अब से शुरू होता है 68 पृष्ठ पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तक जीवों में, पहले यह नक्की करना है प्रेरणा बैंक कि इनमें कौन कौन से स्थान हो गए। मिथ्या तो गुण स्थान है। हाँ, दस नौ और आठ, तीन हो गए। तिर्यंचा लब्ध्य पर्याप्तक है, मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक है, तो यहाँ वो अनंतानुबंधी रहित वाला स्थान यहाँ नहीं होगा।
सात वाला नहीं।
तो दस नौ और आठ, यानी नौ वाले है भय के साथ होगा या जुगुप्सा के साथ होगा। तो कहते हैं दस और आठ प्रकृतियों के उदीरक जीव का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, जो एक्सट्रीम वाले है उनको अंतर्मूर्त और बीच वाले को एक समय। छह नहीं, दस नौ आठ तीन ही स्थान है।
नहीं, दस और छह एक्सट्रीम है
ना? नहीं, यहाँ पर दस नौ आठ तीन ही स्थान है। तीन में दस वाला भी एक्सट्रीम है और आठ वाला भी एक्सट्रीम है। वो छह वाला हमने चौथे गुण स्थान में देखा, यहाँ हम दस नौ और आठ लब्धि अपर्याप्तों के तीन ही स्थान है, उसमें दस भी एक्सट्रीम है और आठ भी एक्सट्रीम है, तो उनका अंतर होगा अंतर्मूर्त। और बीच वाला जो नौ का स्थान है, हाँ, उसके लिए बताएंगे। तो नौ प्रकृतियों के उदीरक जीव का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, यानी ये ट्रिक हमें अच्छी मिल गई ना। अब विशेषार्थ, दस प्रकृतियों के उदीरक उक्त जीवों को, दस प्रकृतियों के कौन है? जिनके भय और जुगुप्सा दोनों की उदीरणा चल रही है, उनके अनुदीरक होकर, यानी उनका उदय दोनों का ही मिटना चाहिए, पुनः उदीरक होने में अंतर्मूर्त काल लगता है। यहाँ यही नियम आठ प्रकृतियों के उदीरकों के विषय में भी जान लेना चाहिए। आठ यानी दोनों का ही उदय नहीं था, अब आठ में से वो नौ वाला हो जाएगा, दस वाला हो जाएगा, जो कुछ हो, फिर वापस आठ में आने के लिए अंतर्मूर्त काल लगेगा। इसलिए तो इन दोनों प्रकार के जीवों में दस और आठ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का 68 पेज विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। पर नौ प्रकृतियों के उदीरकों के लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भय के साथ जो नौ प्रकृतियों की उदीरणा कर रहा है उसके भय की उदय विच्छित्ति होने पर एक समय के अंतर से जुगुप्सा की उदीर्ण होने लगे। भय की हो रही थी, भय की उदय विच्छित्ति हो गई, फिर बीच में कुछ नहीं था। एक समय के बाद जुगुप्सा का शुरू हुआ,
नौ का वापस
तो एक समय के लिए वो नहीं था, नौ का अंतर होके आठ का हो गया था। यह संभव है, इसीलिए तो यहाँ पर नौ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय कहा, और भय के साथ नौ प्रकृतियों का उदय उदीरक उक्त जीव उसकी उदय विच्छित्ति करके अंतर्मूर्त के बाद जुगुप्सा का उदीरक हो, यह भी संभव है। इसलिए नौ प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और दस के लिए जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। देखो ये मिथ्या दृष्टि है सारे ही सारे, और इसमें दस नौ आठ तीन ही स्थान है, तो दस वाला भी एक्सट्रीम वाला है, आठ वाला भी एक्सट्रीम है, तो उनके लिए अंतर अंतर्मूर्त होगा जघन्य भी, बीच वाले के लिए एक समय घटित हो सकता है, जघन्य अंतर एक समय घटित होता है, उत्कृष्ट तो अंतर्मूर्त उसके लिए भी। यहाँ उत्कृष्ट अंतर अदरवाइज नहीं होता, अन्यथा नहीं होता, क्योंकि एक ही गुणस्थान चल रहा है। कभी कभी हम दस का अंतर देखते हैं, ओघ में देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि था, समय दृष्टि बन गया, दस वाला अंतर ही अंतर चलेगा, तो दो शास्त्र सागर का तक तो समय दृष्टि रहेगा, तो दस का अंतर कहलाएगा। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ मात्र मिथ्या तो गुणस्थान ही है, दस नौ आठ तीन में ही चलेगी बात, तो अंतर्मूर्त से ज्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा। आवाज आ रही है?
हेलो।
अब आगे देखते हैं, विशेषार्थ का अपना हुआ पूरा। मनुष्य त्रिक में ओग से आदेश से बात चल रही है ना, यहाँ पर मनुष्य त्रिक में दस, मनुष्य त्रिक में कौन कौन से उदीरक के स्थान है, प्रकृति स्थान कौन कौन से है? हाँ लक्ष्मी, नहीं नहीं नहीं, मनुष्यों में उदीरणा के कौन कौन से स्थान हो गए? उदीरणा स्थान
एक दो चार पांच
सभी हो गए, सभी हो गए।
एक दो चार पांच
सभी के सभी है, एक से लेकर दस तक एक्सेप्ट तीन वाला।
हाँ, तीन को नहीं, मेरे तीन नहीं बोला
आपने, एक दो चार पांच कहा। तो मनुष्य त्रिक में दस प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि वो एक्सट्रीम वाला है तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त हुआ, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले है। अब ये दस का अंतर कब होगा? जब वो समय दृष्टि होगी। अब उसको समय दृष्टि रखना है, ओग में तो हमने दो छासर सागर देखा था, परंतु यहाँ मनुष्य में ही रखना है, तो मनुष्य में रखते हुए और वापस उसको दस वाला स्थान भी आना चाहिए, वो भी बात सही। आप कहेंगे लगातार उसको मनुष्य में रखो, तो लगातार मनुष्य में रखेंगे तो उसको मिथ्या दृष्टि में रखना पड़ेगा, और मिथ्या तो में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में दस का स्थान आता रहेगा, हमें मैक्सिमम अंतर चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ मनुष्य पूर्व कोटि वाला मनुष्य में उसको सम्यक तो प्राप्त कराओ और वहाँ भेज दो शाही वाला करके, तो चलेगा क्या?
नहीं, दस पाया होगा ही,
वापस दस में आना चाहिए। इसलिए वापस मिथ्या तो में लाना है, तो भोग भूमि में सम्यक के साथ भेज देंगे तो क्षायिक वाला भेजना पड़े, तो इसलिए वहां जाने पर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, और फिर आयु के अंत में फिर मिथ्या तो में आ गया। भोग भूमि में दस का स्थान था, फिर सम्यक तो प्राप्त करने पर अन्य नौ आठ सात जो कुछ हो गए उसके, और बाद में वापस लौट कर मिथ्या तो में आया, तब जाके उसके दस का स्थान दोबारा हुआ। इसलिए कहते कुछ कम तीन पल्ल। ये जो बताते वो तो सही है, परंतु वो कैसे घटित हो सकता है ये हमें सोचना है। नौ और आठ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, अभी ये तो बीच वाली प्रकृतियां हैं, इतना ही बताया नौ और आठ, तो नौ और आठ एक समय के लिए हो सकता है। नौ वाला देखो मिथ्या तो में है, तो नौ वाला एक समय तक हो सकता है, क्योंकि वहां दस नौ आठ वाले स्थान है। अब ये सासादन वाला है, सम्यक नित्यात वाला है, सम्यक दृष्टि है, नौ आठ सात है, तो आठ वाला बीच में है तो उसका एक समय घटित होगा। अपनी मार्गणा तो मनुष्य त्रिक की है तो वहाँ ये घटित हो सकता है। तो नौ और आठ प्रकृतियों के जघन्य अंतर वो एक समय होता है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि नौ और आठ के अंतर के लिए क्या करना चाहिए, आठ वाला तो पांचवें गुणस्थान में भी होता है, परंतु सात वाला जो है यानी आठ जहाँ नहीं है ऐसे स्थान संयोगों के हो गए, तो पहले नौ और आठ वाला था वो। नौ और आठ वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सासाधन समय दृष्टि सभी में है पॉसिबल, और आठ वाला स्थान पांचवे तक है, तो इनको संयत बना दिया यानी मुनिराज हो गए, तो उनके नौ और आठ के स्थान नहीं रहे, और वापस लाना है ना मनुष्य त्रिक में रखते हुए उसको वापस लाना है, तो अंत में जाके फिर नीचे के गुण स्थानों में आए तो नौ और आठ के स्थान शुरू हुए। इस तरह से उसका अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि होगा।
आठ साल
के बाद संयम धारण किया तब अंतर शुरू हुआ, अंत में जाके पांचवे में आए चौथे में आए तो अंतर समाप्त होगा। ओघ में तो हम उनको देव में भी ले जा सकते, चारों गति उसमें इंक्लूडेड है, वो बात नहीं है यहाँ पर, और वहां भी नौ और आठ के अंतर के लिए तो मनुष्यों में ही लाना है उनको, क्योंकि संयम ही बना है। अकेला नौ का अंतर करना है तो तीरियंचों में भी पॉसिबल था, उनको संयमा संयमी बना दिया नौ के अंतर के लिए। यहाँ हम मनुष्य त्रिक में देख रहे हैं, अब मनुष्यों में ही सात और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, ये यहाँ गुणस्थान बताया नहीं सात और छह का, तो सात बीच में कब हो सकता है, तो पांचवे गुणस्थान के लिए आठ सात छह वगैरह होते हैं स्थान, तो सात सेंटर में है तो उसका एक समय घटित हो सकता है। वैसे ही छह प्रकृतियों के जघन्य अंतर एक समय है, छह भी बीच में कैसे औपशमिक समय दृष्टि के, सात छह और पांच हो गए संयमियों के, तो वो छह वाला भी स्थान सेंटर में आता है तो उसका भी एक समय घटित होगा। ख्याल में आई बात? जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले। अभी सात और छह के लिए कितना कहा, पूर्व कोटि, और ये सात वाला स्थान
चौथे गुण स्थान
वो नीचे मिथ्यात्व में होगा ही नहीं, अब उनको मिथ्यात्व में भेज देना,
समय दृष्टि हो गया
यानी वो तो संयमी थे सात और छह के या समय दृष्टि थे तो उनको नीचे के गुण स्थानों में भेज दिया तो उसका अंतर होगा, या अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के सात वाला स्थान मिथ्या दृष्टि को भी था परंतु उसमें से वो तो संयोजना हो गई है उसकी, तो बाद में तो दस नौ आठ के स्थान रहेगा, संयोजना होने वाले की बात है ना वो सात वाला स्थान, यानी वो ऑलरेडी मिथ्या दृष्टि हो गया है, संयोजना कर दी है तो उसको सात का स्थान था कुछ काल के लिए, बाद में आठ नौ दस वाले तीन स्थान हो गए तो भी वो लगातार मिथ्या दृष्टि रखना उसका, और लास्ट में जाके फिर समय दृष्टि बनाना, तो कितना होगा, तो उसको कहते हैं पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले। समय दृष्टि हो गया तो वापस उसको वह आठ वाला स्थान हो गया, ये सात वाला स्थान हो गया, सात की बात करें ना, छह वाला भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है चौथे वाले को, हाँ नौ आठ सात और
छह
औपशमिक समय दृष्टि, तो तीन पल्ले के अंत में वो प्राप्त करेगा तो उसके वापस छह वाला भी स्थान हो जाएगा। नहीं नहीं शाही करेंगे तो फिर अंतर नहीं घटित होगा ना, वापस उसको मिथ्या तो में लाना था या ऊपर भेजना था, नहीं हमें तीन पल्ले के अंत में समय तो प्राप्त कराना है तो वहाँ पर उसको तो औपशमिक ही हो सकता है, शाही नहीं, छह वाला तो उसी के होगा, बात ख्याल में आई। अब पांच प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, अब पांच को सेंटर में रखना है, पांच को पांचवें गुण स्थान में भी पांच वाला स्थान हो सकता है परंतु वो तो एक्सट्रीम में होता है ना, तो यह और ऊपर ले जाना मुनियों की अपेक्षा, तो उनके कौन से होते हैं, सात छह पांच और चार, ये चार स्थान हो सकते हैं। तो 6, 5 और 4 या औक्षमिक के या क्षायिक वाले जो मुनिराज है उनके हो सकता है, तो उनका एक समय घटित होगा। औक्षमिक समय दृष्टि 6वें 7वें गुण स्थान वाले, तो उनके क्या है, दर्शन मुनि नहीं है, एक संज्वलन है, एक वेद है और एक युगल है। तो भैजुगुप्सा नहीं होगी तो 4 का स्थान और 1 होगी तो 5 का, तो 5 सेंटर में आता है तो उसका एक समय घटित हो सकता है। जहाँ जो स्थान भय या जुगुप्सा से बनता है
उसका
उसमें तो एक समय घटित होता है। ये बात ख्याल में, वो गुणस्थान कौन सा है वो हमें सोचना है, अभी हम बहुत बार सोच रहे हैं ना। तो 6वें 7वें में ये बात पॉसिबल है। अब उसको कहते हैं, उसमें जघन्य अंतर तो एक समय देखा हमने, अब उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। देखो वापस 5 वाले स्थान में लाना है, तो वापस पूर्व कोटि पृथक्त्व क्यों ले, ऊपर क्या लिखा था, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य। अभी अश्विन भाई नहीं बोलेंगे, 7 और 6 के अंतर के लिए पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य का प्रतिभात आई, और अब यहाँ क्या कहते हैं, 5 के जो है उसके लिए मात्र पूर्व कोटि पृथक्त्व का। हाँ, 5वां गुण स्थान प्राप्त करने पर वो 5 का स्थान हो सकता है, और ये भोग सीरियंस की बात नहीं, मनुष्यों की बात चल रही है, वो भोग भूमि में अगर भेजेंगे तो 5वां स्थान नहीं होगा, 5वां गुण स्थान नहीं होगा, इसलिए उसको भोग भूमि वाला नहीं बनेगा। वहां तो 4था ही गुण स्थान है, तो वहां उपशमिक वाला भी होगा, तो मिनिमम तो 6 वाला स्थान होगा, और हमें अब वापस 5वें में लाना है, तो इसलिए उसको पूर्व कोटि पृथक्त्व में रखना, अंतिम भव भी वो पूर्व कोटि वाला लेते थे। हम अंतिम भव के बदले वहाँ 1 पल्ले 3 पल्ले वाला लेते थे, उसके बदले पूर्व कोटि वाला ही रखना, और अंत में जाके उसको फिर संयम धारण करना उपशम समय के साथ, तभी वापस 5 नंबर का। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। 5 का तभी हो सकता है, भोग भूमि में 4था ही गुणस्थान हो सकता है, 5वां नहीं हो सकता है। अब यहाँ संयम धारण कराओ या 5वां गुणस्थान प्राप्त कराओ, तो वापस उसके 5 वाला स्थान मिलेगा, यह अंतर घटित होगा पूर्व कोटि पृथक। यहाँ 3 पल्य नहीं लिया है, चार का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है,
4-5
हाँ, और बढ़ेगा ना, पहले 4 का कराओ फिर बाद में 5 का कराओ, हाँ अंतर और बढ़ सकेगा, क्योंकि उसमें 3-3 पॉसिबिलिटी है ना, तो अन्य उसको धारण कराना और बाद में 5 पर लाना।
ये तो आयु के अंत में उसको सभ्यत्व प्राप्त करवाना है, तो वहाँ पे तो वो 5वें गुण स्थान में उत्सम सभ्य दृष्टि हो जाएगा, तो उसका 5 वाला स्थान हो जाएगा ना,
तो आइदर 5वां या 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त होगा, तो भी हो सकता है ये बात, क्योंकि 5 का स्थान तो दोनों के है। तो यहाँ तो पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा, और वहाँ पूर्व कोटि पृथक्त्व भी 3 पल्य का, ये डिफरेंस क्यों है ये हमें ख्याल में आना चाहिए। 4, 2 और 1 प्रकृति के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। लक्ष्मी बेन आप बताएंगे अभी ये कैसे होगा। हाँ, जघन्य अंतर उपशम श्रेणी की अपेक्षा है, हाँ मिथ्या तो मेरा पूर्व कोटि पृथक्त्व, अंत में फिर उसको श्रेणी चढ़ाना है, इसलिए उसके भोग भूमि वाला भव नहीं लिया। अब ये 4 का स्थान अन्यथा भी होगा किसी के उपशम श्रेणी के बिना। हाँ प्रेरणा बेन, नहीं वो तो बता ना, 6वें 7वें में
शायिक जीव को होगा
ना, औक्षमिक वाले के लिए औक्षमिक शायिक दोनों हो सकते हैं, तो उसके लिए 4 का उदय है, वैजुगुप्सा दोनों नहीं, वो एक्सट्रीम वाला है, एक्सट्रीम वाला है, तो उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा, यानी वैजुगुप्सा का उदय हुआ और वापस दोनों का उदय मिट गया, वापस हो सकता है ना, वो तो उसके लिए उपशम श्रेणी की भी जरूरत नहीं है। सामान्य संयमी जो है, औक्षमिक समय दृष्टि है, तो भय जुगुप्सा का उदय बदलने के कारण अंतर्मूर्त अंतर घटित होता है। उत्कृष्ट भी और जघन्य भी उसके लिए अंतर्मूर्त होगा, परंतु उत्कृष्ट अंतर घटित कराना है
नीचे भेज दो
तो फिर वो विशेषार्थ भी इसी का देखते हैं। दस आदि प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर जिस प्रकार ओघ में घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर घटित कर लेना चाहिए। उसी प्रकार यानी उसको समय दृष्टि बनाओ। मात्र उत्कृष्ट अंतर मनुष्यत्रिक की काय स्थिति और अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर घटित करना चाहिए। ओघ में तो हमने 266 सागर देखा, अब यहाँ मनुष्यत्रिक में ही रखना है, तो अधिक से अधिक लंबे काल तक समय दृष्टि रखना है, उसकी अपेक्षा यहाँ घटित करें। यथा दस प्रकृतियों का उदीरक मिथ्या दृष्टि ही होता है, इसलिए इन प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम तीन पल्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ सम्यक के साथ जाने वाले के वापस दस का स्थान नहीं होगा, वो तो क्षायिक होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जिसने उत्तम भोगभूमि के प्रारंभ और अंत में दस प्रकृतियों की उदीरणा की और मध्य में समय दृष्टि रहकर इनका अनुदीरक रहा, उसके यह अंतरकाल बन जाता है। युक्ति से विचार करने पर इससे अधिक अंतरकाल नहीं बनता, क्योंकि कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मनुष्य को छोड़कर, देखो कितना स्पष्ट बताया ना, अन्य वेदक समय दृष्टि मनुष्य का मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पंचम काल का कोई मनुष्य मिथ्या समय दृष्टि मनुष्य मरकर मनुष्य नहीं होगा, कहीं का भी नहीं होगा। यानी अभी का समय दृष्टि वो जावे सिमंदर के पास जाना चाहते हैं ना बहुत से जी, मिथ्या दृष्टि जा सकता है ना, डायरेक्ट जाना है तो, या समय दृष्टि जाएगा तो बीच में मिथ्या तो में आना पड़ेगा। वे कहते ना वो समय दृष्टि और अभी नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाला है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो समय दृष्टि नहीं है, कोई कहते ना अभी समय दृष्टि है और नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाला है, तो वो विदेह क्षेत्र में कैसे जन्मेगा? यहाँ से समय दृष्टि हो तो हो सकता है कि अंत में अभी मुनिराज भी जा सकते हैं मिथ्यात्व में, तो इसके जाने में कोई हर्जा नहीं, तो मिथ्यात्व में जाकर मरण होके वहाँ उत्पन्न हो सकता है। यानी मिथ्यात्व में जाएगा फिर आयु बांधेगा वो सब, या पहले आयु मनुष्य बांधी है
प्राप्त करेगा और पीछे मिथ्यात्व में चला गया आयु बांधी और सब,
आयु पहले भी बांध सकता है, मनुष्य आयु बांधी थी समय दृष्टि हुआ लास्ट में फिर मिथ्यात्व में गया और फिर वहाँ का
समय दृष्टि
नहीं वहाँ का मिथ्या दृष्टि हुआ पीछे वहाँ फिर वहाँ पर जो कुछ उसके साधना हो जाएगी, यानी ये ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं जा सकता वो नहीं, परंतु बीच में मिथ्या तो में उसको जाना है, और सम्यक तो बना रहे तो वो तो जीव देव में जाएगा। यहाँ का पंचम काल का मनुष्य समय दृष्टि दी, कृतकृत्यपन हम पंचम काल की बात कर रहे थे, कृतकृत्य वाला तो जाता है उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऑर्डिनरी समय दृष्टि वेदक समय दृष्टि जीव वहाँ उत्पन्न नहीं होगा समय के साथ। तिरियंचों के लिए भी यही रूल है, हाँ नरक के लिए भी है,
लेकिन कोई समय दृष्टि जीव न गया वापस
क्या क्या क्या
मनुष्य में
समय दृष्टि मरकर पंचम काल का मनुष्य में समय दृष्टि उत्पन्न हो, अरे वहाँ तो विदेह में नहीं जा सकता, यहाँ तो क्या बात है, यहाँ तो कोई जन्म से समय दृष्टि होता ही नहीं है। जैसे स्त्री में कोई जन्म से समय दृष्टि नहीं है, वैसे पंचम काल के मनुष्यों में भी कोई भी जन्म से समय दृष्टि नहीं है। सम्यक के साथ मरने वाले यहाँ क्यों उत्पन्न होंगे? तो देव में चले जाएंगे।
चौथे काल में भी नहीं होगा ना? इससे
चौथे काल में भी यही रूल है,
शाइक के तो वो
समय दृष्टि तो वहाँ चले जाएंगे,
भोगभूमि में जाएगा, यहाँ पे तो नहीं,
शाइक वाले भोगभूमि में जाएंगे और यहाँ वहाँ के समय दृष्टि देव में चले जाएंगे। हाँ। अभी हम जो देख रहे थे कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मनुष्य को छोड़कर अन्य वेदक समय दृष्टि मनुष्य का मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होना संभव नहीं है। अन्यत्र मिथ्यादृष्टि रहते हुए इस पद का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है, यानी लगातार मिथ्यादृष्टि रहे तो 10 वाला अंतर्मूर्त के बाद फिर 10 में आएगा ही नियम से लौटकर। 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि ओघ प्ररूपणा में घटित करके बतलाया ही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए, कुछ कम एक पूर्व कोटि की बात हमने देखी थी, संयमी बना रहे फिर
तो पांचवें गुण स्तर में भी देख सकते हैं।
अन्य विशेषता नहीं होने से अलग से खुलासा नहीं किया। 7 और 6 प्रकृतियों का उदीरक कोई उपशम समय दृष्टि मनुष्य मिथ्यात्व में गया और पूर्व कोटि पृथत्व अधिक 3 पल्य काल तक वह उसके साथ रहा, मिथ्यात्व के साथ तो वो 3 पल्य में रह सकता है, और अंत में उसने उपशम सम्यक्त पूर्वक इन पदों को पुनः प्राप्त किया, यह संभव है। 7-6 की बात चली, इसलिए यहाँ पर इन 2 पदों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्य कहा है। 5 प्रकृतियों का उदीरक संयमासंयमी या संयमी ही होता है और मनुष्य पर्याय के रहते हुए संयमासंयम या संयम का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक नहीं प्राप्त होता, यानी उसको 2 बार वो 5वां प्राप्त कराना है तो उसी भाव में रखना है उसको। यही कारण है 5 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण कहा है। पर इतनी विशेषता है कि संयमा संयम में उत्कृष्ट अंतर के लिए प्रथम बार उपशम सम्यक दर्शन के साथ संयमा संयम ग्रहण कराना चाहिए और दूसरी बार क्षायिक सम्यक के साथ संयमा संयम ग्रहण कराना चाहिए।
प्रथम उपशम नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्व कोटि में तो दूसरी बार प्रथम उपशम नहीं होगा, तो कैसे करना है?
पूर्व कोटि में दूसरी बार
प्रथम उपशम नहीं,
बात सही। पूर्व कोटि पृथक्त्व है ना, ये फिर भी वो तो
नहीं, नहीं पूर्व कोटि का है ना, कुछ कम पूर्व कोटि
किसके लिए? 5 के लिए।
5 के लिए
क्यों?
क्योंकि पहली बार उसने 5 का स्थान प्राप्त किया उपशम सम्यक्त्व के साथ, 5वें गुण स्थान में गया।
पूर्व कोटि पृथक्त होना चाहिए क्योंकि उसको बीच में मिथ्यात्व में रखना है, पूर्व कोटि पृथक्त्व अंतिम भव में फिर 5वां
गुण स्थान,
पर इसलिए हमने उसको भोगभूमि में नहीं भेजा था, वहाँ 5वां नहीं प्राप्त हो सकता इसलिए।
और यहाँ पे वापस,
परंतु वहाँ अभी तो पूर्व कोटि पृथक्त्व में दोबारा उपशम नहीं हो सकता,
इसलिए उसको साइक कर दिया,
यानी पृथक्त्व पूर्व कोटि में दोबारा उपशम नहीं हो सकता। नहीं उसकी बात नहीं है, अर्लीएस्ट उसके 5वें में हो सकता है। अच्छा,
पहली बार उसको उपशम के साथ 5वें में भेजा,
संयम भी हो सकता है 5वां भी, परंतु यहाँ 5वें से काम हो जाता है ना। संयम ही हम लिख सकते हैं वहाँ पर, परंतु यानी 5वां गुणस्थान जल्दी प्राप्त हो सकता है, ऐसी बात आप कह रहे हैं, परंतु अन्य अन्य जीवों की पॉसिबिलिटी हम लेते तो उसमें तो कोई विशेषता में लिखा है उन्होंने, यहाँ लिखा ना 5 प्रकृतियों का उदीरक संयमासंयमी या संयमी ही होता है और उसका अंतर उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक नहीं होता, दोनों को लिया है। पर इतनी विशेषता है कि संयमा संयम में उत्कृष्ट अंतर के लिए प्रथम बार उपशम सम्यक दर्शन के साथ संयमा संयम ग्रहण कराना चाहिए और दूसरी बार क्षायिक सम्यक्त्व के साथ सेम असेम ग्रहण कराना चाहिए। संयम के लिए भी यही गुण हम लगा सकते हैं। चार दो और एक प्रकृति के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है यह स्पष्ट ही है।
नहीं, आगे जो देखा ना संयम है, संयम में उत्कृष्ट अंतर के लिए प्रथम बार प्रथम अवसर प्राप्त करवाया और वही जीव संयम है संयम ही रहा और अंत में जाके उसने शायिक कर दिया।
कैसे रहेगा संयम है संयम ही, उसको इतने पूर्वकोटि पृथक्त्व के भोग करने में
अच्छा इतना काल तो नहीं रहेगा।
उसको मिथ्यात्व में यानी नीचे के गुणस्थानों में लाना है, मिथ्यात्व में लाना है, तभी दोबारा वो मिथ्यात्व में पूर्वकोटि पृथक्त्व भव करेगा और अंतिम भव में उसको क्षाई कराना है।
पर तो यहाँ पे यह जो बताया ना संयम संयम में वो में निकालना पड़ेगा। अच्छा मैं सोचा वो संयम संयम की बात कर रहा है।
नहीं, संयम संयम में उत्कृष्ट अंतर की बात कर रही है। संयम संयम ही जीव के उत्कृष्ट अंतर के लिए पहली बार जो करेंगे तो औपशमिक और दूसरी बार करेंगे वो क्षायिक, ये बात, क्योंकि मनुष्य में रखना है और पूर्वकोटि पृथक्त्व में उसका वेदक योग्य काल चल रहा है, इसलिए वेदक योग्य काल में उसको वेदक सम्यक्त्व ही प्राप्त होगा। तो पहले वेदक होगा तो उसको पांच का स्थान होगा नहीं,
उसको छह का होगा।
हाँ, इसीलिए और... नहीं नहीं अभी मुझे बात समझ में आई, संयम को क्यों नहीं लिया। वेदक समय दृष्टि संयमी अगर हो जाएगी, वेदक समय दृष्टि संयमी हो जाएगी, औपशमिक उसका वेदक योग्य काल है। हाँ। तो संयमियों के कौन से स्थान होते हैं? वेदक समय दृष्टि संयमी के तो पांच का हो ही जाएगा उसके।
हाँ।
तो उसके लिए उसको औपशमिक क्षय की कंडीशन नहीं
है।
संयम की शायिक की कंडीशन है क्योंकि संयम संयम के कौन से स्थान है? आठ सात
छह,
वेदक समय दृष्टि के तीन हो गए।
हाँ।
और क्षायिक वाले के पांच वाले होगा क्योंकि ऑप्शन उसको प्राप्त नहीं करा सकते। समझ में नहीं ये बात? देखो इसका अर्थ क्या है, ये संयम संयम में क्यों कंडीशन डाली उन्होंने? एक तो पूर्वकोटि पृथक्त्व में दोबारा उपशम सम्यक तो नहीं होगा, वेदक होगा। नहीं नहीं वेद हो सकता है तो पहले होगा तो डायरेक्ट तो क्षायिक नहीं हो सकता, वेदक ही होगा। अब वेदक समय दृष्टि संयम संयम के स्थान कौन से और वेदक समय दृष्टि संयम के स्थान कौन से? वेदक होगा ना, उसको वेदक होगा निश्चित है। अभी वेदक
संयम में सात छह पांच,
वेदक संयम में
सात छह पांच वाला होगा,
सात छह पांच स्थान है के स्थान है। यानी वेदक समय दृष्टि सातवा छठवा हो जाएगा तो उसके लिए क्षायिक की कंडीशन नहीं, ऑर्डिनरी वेदक वाले को भी पांच वाला स्थान हो जाता है। परंतु वेदक संयमा संयमी के आठ सात छह ही स्थान हो गए,
क्षायिक वाले को ही पांच वाला स्थान,
वेदक संयमा संयमी के आठ सात छह स्थान हो गए। इसलिए संयमा संयमी के
पांच वाला
क्षायिक होने पर
पांच वाला,
यानी उसी वेदक वाले को एक क्षायिक बना दो, पांच का स्थान होगा। क्योंकि क्षायिक के कौन से हो जाए? सात छह पांच, सात छह पांच,
पांच छह सात,
वही तो हमने सात छह पांच का। यानी ये संयम संयम के लिए कंडीशन क्यों है? संयमी होते हैं तो वेदक से काम चलेगा।
हाँ।
परंतु संयम संयमी में अगर घटित करना है पांच वाला स्थान
तो शाही
तो उसको क्षायिक कराना, क्योंकि औपशमिक तो बन नहीं सकता है, और उसको वेदक रखेंगे तो पांच का स्थान होगा नहीं, इसलिए उसको पांचवे की अपेक्षा क्षायिक होना आवश्यक है। सातवां और छठवां, सातवां पहले में पहले वो सातवां प्राप्त करेगा तो उसको डायरेक्ट पांचवे का स्थान हो सकता है। कुछ ऐसी बात आती है तो ज्यादा सोचते हैं ना, उत्तर मिल जाता है। चार दो और एक प्रकृति के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि चार वाला भी स्थान श्रेणी की अपेक्षा भी हो सकता है और वो औपशमिक सातवें गुण स्थान की भी अपेक्षा होगा, और फिर अगर वहां चार का उत्कृष्ट अंतर लाना है तो दोबारा उसको भी क्षायिक कराना पड़ेगा चार के लिए।
हाँ।
और मात्र ऑर्डिनरी रखना है तो उपशम सम्यक तो की उपशम श्रेणी की अपेक्षा भी पूर्व कोटि पृथक घटित होगा, उसके लिए वो वेदक रहेगा तो चलेगा। बात ख्याल में आई दोनों को? हाँ। क्योंकि वो द्वितीय उपशम हो जाएगा ना तो चार का हो जाएगा।
कम हो जाएगा।
पहली बार तो औपशमिक सम्यक के साथ चार का हुआ था, दूसरी बार द्वितीय उपशम में वो चार का कर देगा। ये मनुष्य त्रिक की बात है, मनुष्य त्रिक में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स है ना। अब देवों में तो चार ही गुण स्थान है, तो दस और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अब यहाँ भी छह एक्सट्रीम्स है, यानी चौथे वाले को भी छह का स्थान होगा तो नौ आठ सात छह वाला किसके होगा? औपशमिक के, औपचारिक के, तो एक्सट्रीम वाला है उसको जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। सात प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, अब ये कहाँ घटित होगा ये सोचना है।
सात का उदीरक है, साइक जीव जब भी सात का कर रहा है,
नहीं सात सेंटर में आना चाहिए ना, नौ आठ सात वो नहीं हो सकता,
नहीं तो वो नहीं हो सकता है।
औपशमिक समय दृष्टि को आठ सात छह हो जाएगी।
हाँ।
औपशमिक कहो या साइक को।
हाँ।
तो सात प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय, औपशमिक या क्षायिक समय दृष्टि के, और सब पदों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम इकतीस सागर है, क्योंकि दस का अंतर है तो फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि बनाना है। शाइक वाले को दस का स्थान होता ही नहीं ना, नहीं सब पदों का, सात का हमने जघन्य अंतर देखा, अब सबका उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं तो दस का उत्कृष्ट अंतर लाना है।
सात का अच्छा देखते हैं, इकतीस सागर में तो अपर प्रथम उपशम हो सकता है ना, नहीं वो भी नहीं होगा, उसका सात का स्थान मिथ्या दृष्टि को होगा ना वापस।
दस का पर हम दस की बात चल रही है अपनी,
अच्छा मैं सात का
सभी पदों की बात चल रही, तो हम दस नौ आठ सात की बात देखेंगे। हाँ। तो दस वाला तो मिथ्या दृष्टि है, तो बीच में इकतीस सागर तक उसको तो समय तो रखना।
हाँ।
तो कुछ कम इकतीस सागर घटित होगा। अब यहाँ सब पदों का जो लिखा है, नौ आठ आठ की बात नहीं की थी,
सात का ऊपर इकतीस सागर,
देखो अभी सुनो, ऊपर हमने दस की बात देखी।
हाँ।
अब छह की बात देखते हैं, छह का किसके हुआ था? औपशमिक समय दृष्टि के, तो उसको औपशमिक वाला ही रखना, क्षायिक नहीं रखना, क्योंकि क्षायिक रखेंगे तो छह वाला स्थान तो अंतर्मूर्त में वापस आएगा उसको, और लंबा अंतर चाहिए तो औपशमिक समय दृष्टि है, फिर वो मिथ्या तो में चला गया, ऐसा लेना है ना। या
नहीं देव में तो ऐसा होता है ना, इकतीस सागर में तो अपशम प्रथम अपशम कर सकता है,
होता है तो ना, इसीलिए तो बता रहे हैं, पहले छह का स्थान था, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया औपशमिक समय दृष्टि के बाद,
अंत में जाके वापस,
और फिर अंत में जाके फिर
प्रथम अपशम,
तो उसके छह का स्थान हो गया। अब सात का स्थान की आप बात करें, सात का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम इकतीस सागर है, तो दस नौ और आठ की बात है, पहले गुण स्थान में सात का स्थान किसके होता है? विषय योजना के बाद संयोजना करने वाले। अभी ऑर्डिनरी मिथ्यात्व में रखना उसको, सम्यक्त्व के साथ वहाँ उत्पन्न हुआ था तो नौ आठ सात का स्थान था, और वो इक्कीस सागर में जन्मने के बाद वो अंतर्मुख में यथा काल में मिथ्या दृष्टि हुआ, थ्रू आउट मिथ्या दृष्टि रहा, बाद में जाके वो सम्यक दृष्टि हुआ, तो उसके भी आठ सात छह के स्थान हो जाएंगे दोबारा। ख्याल मेरी बात, तो सात वाला स्थान दोबारा हुआ, नौ और आठ का इसमें से सब पदों में उन्हें छह सात और दस तीन ही लिए थे। यहाँ जो सब पद लिखा है ना, सब पदों का उत्कृष्ट अंतर, यानी ऊपर किस किस की बात की थी, दस का छह का और सात का, वो तो हमने देखा इकतीस सागर होता है। अब नौ और आठ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है, क्योंकि ये तो चारों ही गुणस्थानों में ये पाए जाते हैं नौ और आठ के, क्योंकि पहले वाले को नौ दस नौ आठ है, सात भी हो सकता है किसी के, दूसरे को नौ आठ सात, तीसरे के नौ आठ सात, चौथे के नौ आठ सात और छः। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर नौ ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि यहीं पर वो सारे चारों ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए ये बात घटित होती है। किंतु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। ग्रहवेग की अपेक्षा तो इकतीस सागर कह दिया, और बाकी जिस स्वर्ग में वहाँ की अपनी उत्कृष्ट स्थिति में कुछ कम कहेंगे। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में नौ और छह प्रकृतियों के उदीरक जीव का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। ये छह वाला स्थान किसके होगा सर्वार्थ सिद्धि में?
प्रथम
शायिक, प्रथम ऑप्शन तो होता नहीं,
नहीं होता नहीं, सॉरी
द्वितीय ऑप्शन हो सकता है।
हाँ।
तो सर्वार्थ सिद्धि तक के देव नौ और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। अब द्वितीय ऑप्शन में वो फिर अंतर घटित नहीं होगा, द्वितीय ऑप्शन का काल छोटा है, वो तो वेदक हो जाएगा नियम से, तो क्षायिक वाला हम ले सकते हैं। तो क्षायिक वाला है तो भैजुगुप्सा के उदय के चेंज होने से उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त होगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। वापस लौट के वो भैजुगुप्सा में आ सकता है ना बिना भैजुगुप्सा के। आठ और सात प्रकृतियों के उदीरक जीव का जघन्य अंतर एक समय, ये बीच वाले है ना प्रकृतियां, और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। ये किसके लिए बात चल रही है? अनुदिश और सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में।
यहाँ पे किसे लेगा हम लोग ये छ वाला स्थान अंतर्मूर्त?
कौन सा
देव में जो अनुदिश से अनुत्तर में छ वाला अंतर्मूर्त? हाँ,
आपका प्रश्न है अनुदिश सर्वार्थ सिद्धि में नौ छ वाला अंतर्मूर्त कैसे होगा? तो छ वाला किसके होगा? तो क्षायिक समय दृष्टि के होगा, यानी उसके तो दर्शन होने का कुछ है ही नहीं है। और फिर तीन कषाय,
अच्छा छह सात सात हो जाएगा,
तीन कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, और भैजुगुप्सा नहीं है,
नहीं
तो नहीं थी, वापस भैजुगुप्सा का उदय हुआ और वो मिटकर वापस जीरो हुआ, तो उसके लिए अंतर्मूर्त लगेगा, तो अंतर्मूर्त अंतर घटित होगा, उसमें एक समय वाला अंतर घटित
नहीं होगा।
अब आठ और सात के लिए देवों की बात चल रही है यहाँ के अनुदिश अनुत्तर की, आठ और सात प्रकृतियों के उदीरक जीव का जघन्य अंतर एक समय है, तो आठ का किसके होगा और सात का किसके होगा? एक समय शायक
नहीं, आठ का तो जो वेदक
समय देखो बीच में रखना है, तो ऑर्डिनरी जो वेदक समय दृष्टि है नौ आठ सात, तो आठ सेंटर में है तो उसको एक
समय, शायक को सात वाला होगा,
शायक के लिए आठ सात छह,
सात बीच में,
तो सात बीच में है। और सात का जो जघन्य एक समय है वो क्षायिक समय दृष्टि के, हाँ वेदक होगा क्योंकि उसके नौ आठ सात है ना, और इसके आठ सात छह है। तो सात का एक समय घटित होगा, आइदर भय और जुगुप्सा, उसको ओवरलैपिंग होगा या नहीं भी होगा, वो विशेषार्थ। देखो अभी जो हमने ऊपर देखा ना उसी की बात फिर दोबारा करते हैं। देखो ऊपर क्या बताया था, देवों में 10 और 6 का जघन्य अंतर अंतर्मुख है, ये एक्सट्रीम दोनों बाजू की है। ये चार गुण स्थानों में सब में ले लिया, मिथ्या तो में 10 9 8 और संयोजना करने वाले का 7, दूसरे गुण स्थान वाले के 9 8 7, तीसरे के 9 8 7, चौथे के वेदक वाले के 9 8 7, वर्षायिक औपशमिक वाले के लिए 8 7 6। तो 10 से 6 तक सभी स्थान सामान्य पने देवों में होते हैं, तो जो एक्सट्रीम वाले होते हैं उनका अंतर जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त होता है, और बीच वालों में एक समय घटित हो सकता है। अब हम विशेषार्थ में फिर दोबारा देखते हैं। देखो सामान्य देवों में सामान्य नारकियों के समान अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए, मात्र देवों में मिथ्या दृष्टि जीव नौवे ग्रहवेग तक ही पाए जाते हैं, और नौवे ग्रहवेग के देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर है, इसलिए यहाँ पर कुछ कम 33 सागर के स्थान में कुछ कम 31 सागर कहा है। नारकियों में 33 सागर कहा था, यहाँ 31 सागर कह दिया, यानी वो 6 वाला स्थान उनका अंतर घटित करना है तो कुछ कम 31 सागर, 10 वाले के लिए भी कुछ कम 31 सागर, 10 वाले के लिए समय दृष्टि बनाओ और लास्ट में जाके मिथ्या को मिलाओ, 6 वाले के लिए समय को से मिथ्या समय भेज दो फिर वापस समय दृष्टि बना। इसी प्रकार नव ग्रहवेग तक के देवों में यह अंतरकाल बन जाता है, इसलिए उसे सामान्य देवों के समान जानने की सूचना की है। जो 31 सागर वाली सामान्य देवों में कथन आता है वही ग्रहवेगों के लिए होगा या नवे ग्रहवेग के लिए होगा। मात्र इनमें 10, 7 और 6 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर अपनी अपनी स्थिति प्रमाण ही प्राप्त होगा, इसलिए इस विशेषता की अलग से सूचना की है। अन्य अन्य देवों में अपने अपने उत्कृष्ट आयु के समान वो अंतर घटित करना। नौ अनुदिशादि में आदि ने ऊपर अनुत्तर भी ले लिए, समय दृष्टि ही होते हैं, इसलिए उनमें यह जानकर वहाँ संभव पदों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कहा है। वहाँ संभव पद कौन से हैं, 9 8 7 और 6। वेदक समय दृष्टि के लिए 9 8 7 हो गए और क्षायिक के लिए 8 7 6 हो गए, तो वहाँ पर जो 9 वाला है स्थान उसका जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त होगा, और जो 6 वाला है उसका भी जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होगा। जो वेदक समय दृष्टि के लिए 8 वाले एक समय होगा जघन्य अंतर, और क्षायिक वाले बीच वाला जो 7 वाला है उसका भी जघन्य अंतर एक समय घटित होगा। ये तो उन्होंने वहाँ खुलासा तो नहीं किया, पर अभी हम समझ सकते हैं ना, सुगम होने से उसका खुलासा नहीं किया, ये अपना अंतर का अधिकार यहाँ समाप्त होता है। अब नाना जीवे ही भंग विचय, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, कितना नंबर चल रहा है, 9 आ गया। प्रकृति स्थान उदीरणा में अंतर के बाद अभी यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय चलेगा, यह अनियोग नंबर 9 है। वो अंतर हमारा 60 पेज से शुरू हुआ था, 60 पेज से अब हम पढ़ेंगे इसको। हाँ पेज ही नहीं है, कितनी नहीं, ओहो अभी जीरोक्स करना पड़ेगा। देखो उनके साथ देख लेना, यह सूत्र अधिकार की संभाल करने वाला है। आगे का सूत्र बताते हैं, उन्होंने पहले विचार पूछा था ना भंग नाना जीवों की अपेक्षा, कहते सव जीवा दसन्नम नवन्नम अठन्नम सत्तन्नम छन्नम पंचन्नम चतुन्नम नियमा पवेसगा। सर्व जीवों की अपेक्षा जैसे जो जो गुणस्थान निरंतर है और वहाँ के स्थान भी निरंतर पाए जाएंगे। नहीं समझे, मिथ्या तो गुणस्थान नियम निरंतर है कि नहीं?
चौथा गुणस्थान
तो 9, 8, 7 के सभी जीव होंगे, नहीं करने वाले अनंत जीव होंगे, कोई ना कोई करने वाले। दूसरे तीसरे की बात छोड़ो, चौथा भी हमेशा होगा। चौथे में औपक्षमिक हमेशा नहीं भी होगे, परंतु क्षायिक तो हमेशा होगे। तो 9, 8, 7, 6 ये भी नियम से होगे।
पांचों चार भी नियम से मुनिराज।
अब ये तो पांचवा गुणस्थान भी हमेशा है
और मुनिराज के अपेक्षा
और मुनिराज भी हमेशा है
और क्षायिक,
तो उसमें भी क्षायिक हमेशा हो गए। तो उसमें चार तक के स्थान तो नियम से हो गए ही। नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही ना, यानी ये स्थान हमेशा पाए जाएंगे। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 प्रकृतियों के प्रवेशक सब जीव नियम से हैं। कौन से छोड़ दिए? एक और दो को छोड़कर, क्योंकि वो सारे नीचे के गुणस्थान तो जो हम पहला गुणस्थान चौथा पांचवा छठा सातवां निरंतर है। हाँ, ये तो श्रेणी के गुणस्थानों में होता है, इसलिए एक और दो को छोड़ दिया, बाकी सब नियम से है कह दिया। इन स्थानों के प्रवेशक नाना जीव नियम से है। एक और दो वाले स्थान को छोड़कर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये नियम से है। उनके प्रवाह का विच्छेद नहीं होता, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अनेक जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव उसमें हमेशा ही पाए जाएंगे। दोन्नम 21 से पवेसगा भजी हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है ना, सब जीव नियम से है, यानी नाना जीव नियम से है। वह सव जीवा शब्द डाला है ना ऊपर, यानी सभी जीवों में 10, 9, 8 वगैरह वगैरह नियम से है, यानी सभी जीव सभी के नहीं है, परंतु इनके करने वाले
कोई कोई हाँ, कोई ना कोई रहता ही,
बहुत सारे जीव है। देखिए दो और एक प्रकृति के प्रवेशक जीव भजनीय है, क्योंकि उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी से संबंध रखने वाले इन जीवों का निरंतर सद्भाव नहीं पाया जाता, वो कभी कभी हो गया, इसलिए उसको भजनीय में ले लिया। इस प्रकार ओह से भंग विचय समाप्त हुआ। अब आदेश से कहेंगे, आदेश में नारकियों में देवों में और तिर्यंचों में ये एक और दो के स्थान होते ही नहीं है, तो बाकी होते वो तो नियम से सभी हो गए। मनुष्य में ये बात घटित होती है ना, आदेश से नारकियों में सब स्थान नियम से है, सब स्थान यानी उनमें जितने होते वो सब स्थान, नहीं तो एक वाले दो वाले उसमें नहीं लेना, वो होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, होने वाले सब होते हैं नियम से।
चार होगा ना,
नारकी में 6 ही मिनिमम है, तो उनमें होने वाले सब होते हैं ऐसा।
चौथा
नारकियों में कौन से होते हैं? 10 से लेकर 6 तक।
6
तिर्यंचों में 10 से लेकर 5
चार पांच वाला नहीं होंगे,
5 तक होते तिर्यंचों में, तो उनमें उस मार्गणा में जितने होते हैं वे सब स्थान ऐसा समझना। सब स्थान है वहां होने वाले, क्योंकि समुत्कीर्तना में बता चुके हैं कौन से होते हैं। तो सब स्थान नियम से होते हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, दूसरी से लेकर 7वीं तक के नारकियों में 10, 9, 8 और 7 प्रकृतियों के प्रवेशक नियम से हैं। अब यहाँ क्यों कहा ऐसा, मंदा बेन आप बताएंगे? छह प्रकृतियों को छोड़ दिया। हाँ, तो उसमें 6 का स्थान है कि नहीं है? हाँ, नीचे के नरकों में 6 वाला स्थान है कि नहीं है? औपशमिक वाले को होगा कि नहीं होगा?
औपशम वाले,
परंतु औपशम उपशम सम्यक तो मार्गणा निरंतर नहीं है, इसलिए वहाँ वो भजनीय में डालेंगे, छह वाला भजनीय में डालेंगे। पहले गुणस्थान में तो नहीं, पहले सॉरी पहले नरक में तो निरंतर में लिया, और नीचे
छह वाला,
क्योंकि पहले में औक्षमिक वाले भी हो गए, क्षायिक भी वाले हो गए,
तो क्षायिक वाले तो नियम,
तो क्षायिक वाले तो नियम से निरंतर हो गए, तो उनकी अपेक्षा तो निरंतर बताया। और नीचे के नरकों में छह वाला स्थान होगा परंतु औक्षमिक वाले के होगा, और औक्षमिक समय तो ये शांतर मार्गना है, इसलिए उसको भजनीय कहेंगे। देखो दूसरी से लेकर सातवीं तक के नारकियों में 10, 9, 8 और 7 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव नियम से है, कदाचित ये है, और 6 प्रकृतियों का उदीरक एक जीव है, क्योंकि औक्षमिक सम्यक है ना। कदाचित ये है और 6 प्रकृतियों के उदीरक नाना जीव है, परंतु वो है तो शांतर मार्गना, इसलिए उसको कदाचित है कहेंगे। औषमिक सम्यक वाला एक होगा जीव या अनेक हो गए। अब ये नारकियों की बात बता रहे, हाँ उन्होंने तीन भंग होते हैं इस तरह से कहे। दूसरे से सातवीं तक के नारकियों में 3 भंग है, कदाचित सभी जीव 10, 9, 8 और 7 वाले हैं, और भजनीय में 6 प्रकृतियों का एक जीव है,
वो तो,
और तीसरा भंग 6 प्रकृतियों के नाना जीव,
वो 2 नंबर हो जाएगा ना, एक जीव है।
हाँ उन्होंने सबके मिलकर 3 डाले हैं, 3 भंग है इसलिए 3 डाले। हाँ नंबर वार डालो ना, अच्छा है। हाँ ये दूसरे, ये किसके लिए है? पहले नरक में तो सभी कायम है, दूसरे से सातवें नरक में ये 3 भंग बनते हैं। अब तीरियंच और पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक में 10, 9, 8, 7 और 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव नियम से हैं।
सही है,
6 तक तो नियम से लिए,
पांचवा वाला
क्योंकि चौथे गुणस्थान में क्षायिक समाधि हो गई, तो वो तो नियम से हो गए। हाँ और कहते हैं मनुष्य त्रिक में ओक के समान भंग है, नहीं सॉरी नीचे, कदाचित ये है। अब 5 प्रकृतियों का कौन होगा?
उपशम संदेह तो 5वें गुणस्थान वाला उपशम संदेह,
हाँ 5वें वाला औक्षमिक वाला भी होगा,
और भी औक्षम
चाइक वाला
भी होगा।
तीरंज में 5वें गुणस्थान में चाइक समय नहीं होता, तो औक्षमिक वाला होगा, परंतु वो शांतर मार्गना है, इसलिए कदाचित एक जी होगा, कदाचित अनेक जी होंगे, कदाचित नहीं भी होंगे, इसलिए कहते हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव नियम से हैं, कदाचित ये है, और 5 प्रकृतियों का उदीरक एक जीव है। ये 6 का नियम से है कैसे बताया? हाँ 6 का नियम से बताया ना, तिरियंचो में 6 का नियम से है बताया। हाँ कितने हो गए उसके स्थान, कौन कौन से स्थान हो गए उसके, शायिक समय दृष्टि तिरियंच के चौथे गुणस्थान में कौन कौन से हो गए स्थान? आठ सात छ,
छ सात आठ,
हाँ आठ सात छ हो जाएगी हमेशा। ऑर्डिनरी कितने होते हैं चौथे में? 9, 8, 7 होते हैं ऑर्डिनरी के, और औक्षमिक और क्षायिक वाले के एक और यहाँ कम करना 6 तक आना, वो तो नियम से है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले क्षायिक समय दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे, तिरियंचों की बात है। परंतु आगे क्या कहते हैं, कदाचित ये तो हमसे ही है ही नियम से, 5 वाला भी एक होगा,
और अनेक भी होगा।
पहले तो 5 वाले को नहीं लिया था नियम से, नहीं होगा तो एक होगा, और होगा तो अनेक हो गए, यानी औक्षमिक समय दृष्टि जीव एक होगा या अधिक हो गए। तो कहते 5 प्रकृतियों का उदीरक एक जीव है, कदाचित ये है, और 5 प्रकृतियों के उदीरक नाना जीव है। यहाँ तीनों को एक एक 1, 2, 3 संख्या लिखी उन्होंने, अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में तिर्यंच मार्गणा में पहले सामान्य तिर्यंच लिए, तिर्यंच त्रिक लिए, पंचेंद्रिय तिर्यंच से अब यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त ले रहे, यानी लभ्य अपर्याप्त, तो वो गुणस्थान नियम से पहला है
10-9-8,
तो 10-9-8 प्रकृतियों के उदीरक जीव नियम से है। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, ओग के समान क्या देखा था हमने,
एक और दो भजनी है,
केवल एक और दो भजनीय देखे थे हमने,
बाकी सब
नियम से देखे थे। मनुष्य अपर्याप्तकों में क्या होगा,
सभी भजनी
क्योंकि मार्गणा ही भजनी है, वो होगी या नहीं होगी, वो जीव होगे या नहीं होगे, परंतु सब स्थान में कौन कौन से स्थान होगे ये बताना है आपको। लक्ष्मी
तीन है ना, 10-9-8 एक जीव होगा,
10-9-8 हो गए और वो भजनी हो गए, सभी भजनी है,
सभी भजनी है, तो 26 हो जाएंगे,
भंग 26 है। देवों में नारकियों के समान भंग है, इसी प्रकार स्वधर्म कल्प से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में जानना चाहिए। भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, क्योंकि सौधर्म से लेकर ऊपर तक तो क्षायिक में दृष्टि हमेशा होगी, भले औक्षमिक वाला वो भजनीय भंग नहीं होगा क्योंकि क्षायिक तो हमेशा है ही, भवनत्रिक में क्षायिक नहीं है तो औक्षमिक की अपेक्षा जो होता है वो 8-7-6 वाला स्थान वो भजनीय होगा क्योंकि वहां तो उपशम समय तो शांतर मार्ग है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 9-8-7-6 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव नियम से, सभी नियम से है क्योंकि वहां तो क्षायिक समय दृष्टि तो होगी ही, हमेशा वेद समय दृष्टि भी होगी। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ पर सुगम होने से चूर्णी सूत्रकार ने कार के द्वारा नहीं कहे गए भागाभाग परिमाण क्षेत्र और स्पर्शन का उच्चारणा के बल से कथन करते हैं। हमने 9 तक देखे थे ना अधिकार,
10-11-12
तो भागाभाग में हम 10 परिमाण वाला 11 क्षेत्र 12 और स्पर्शन 13 अभी वो बताएंगे उच्चारणा के अनुसार। यथा भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ये प्रकृति स्थान उदीरना चल रही है। ओघ से 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव, सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, संख्यात बहुभाग प्रमाण है। दस और नौ प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है।
ये 8 प्रकृति के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है, तो दोनों का उदय नहीं है, इसीलिए
दोनों का उदय नहीं है चाहिए कि 10, 9 और 8 क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनंत करने वालों की अपेक्षा ये बात है। तो वो तो संख्यात बहुभाग लिए, 10 और 9 प्रकृतियों के उदीरक संख्यात वे भाग प्रमाण बताए। 7, 6, 5, 4, 2 और 1 प्रकृति के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, तो अनंत वे भाग प्रमाण है, क्योंकि 7 के उदीरक कौन हो गए, हाँ देखो अनंत जीव करने वाले हैं, अनंत में बहुभाग वाले संख्यात बहु उसके संख्यात, यानी दोनों का उदय नहीं है, मिथ्या दृष्टि में ही लेना ना अनंत, वो तो वहीं पर घटित हो गए, समय दृष्टि 8 वाले समय वो संख्यात विभाग, यानी वो तो असंख्यात ही जीव है, उसकी अपेक्षा यहाँ 7, 6, 5, 4, 2 की बात ले ली उन्होंने। समय दृष्टि जो 8 का कर रहे हैं वो 8 का भी कर रहे हैं, 9 का भी कर रहे हैं, 7 का भी कर रहे हैं, तो ये 7 वाले कौन है, मिथ्या दृष्टि हो गए तो वो भी आवली काल में वो भी थोड़े जीव,
सम्यक दृष्टि लेना पड़ेगा ना,
ये अनंत विभाग ही है। सम्यक दृष्टि जो ऑर्डिनरी है, साधन वाले हैं, तीसरे गुणस्थान वाले, सम्यक दृष्टि है, पांचवे वाले, वो भी कितने, सबकी मिलकर भी टोटल असंख्यात होगी, तो अनंत जीवों की अपेक्षा वो कितना है, तो अनंत वा भाव है। तो ये मिथ्या दृष्टि जो अनंत है, दस का नौकर आठ का करने वाले, उनमें आठ वाले संख्यात बहुभाग, दस और नौ संख्यात वे भाग प्रमाण, और बाकी सात से लेकर ऊपर वे अनंत वे भाग प्रमाण। आदेश से नारकियों में आठ प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं, दस और नौ प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है, वहां भी यही नारकी में भी यही अल्पबोध बताया, और शेष प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। यानी दस नौ आठ में संख्यात बहुभाग और वो संख्यात अभाग, और बाकी सब ये असंख्यात वे भाग प्रमाण में आ गए। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंचत्रिक, देव और भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो समय दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। तिर्यंचों में 10, 9, 8, 7, 6 और 5 प्रकृतियों के उदीरकों का भंग ओह के समान है, यानी वहां पर भी 8 वाले संख्यात बहुभाग, 10 और 9 के संख्यात विभाग, और बाकी जो है
अनंत विभाग,
सात छह और पांच वो अनंत विभाग। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में दस नौ और आठ प्रकृतियों के उदीरकों का भंग ओग के समान है, वहां भी आठ है वो संख्यात बहुभाग और दस और नौ है वो संख्यात विभाग प्रमाण। उनकी संख्या कितनी है वो तो परिमाण में, प्रमाण में बताएंगे, यहाँ मात्र भागा भाग बता रहे हैं। मनुष्यों में 10 और 9 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है, 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। सामान्य मनुष्य कहेंगे तो उनकी संख्यात होगी, परंतु अभी यहां मात्र भागा भाग चल रहा है। शेष प्रकृतियों के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है, मनुष्य त्रिक में लेंगे तो संख्यात विभाग कहेंगे, और यहाँ सामान्य मनुष्यों में असंख्यात विभाग कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, असंख्यात के स्थान में संख्यात करना चाहिए, यानी वहां भी आठ के संख्यात बहुभाग, दस और नौ के संख्यात विभाग, और बाकी भी संख्यात विभाग ज्यादा है नारकियों में भी। हाँ, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होते ही वो फिर वापस आएंगे।
नहीं, पर दोनों का उदय नहीं है इससे जीव।
नहीं, इसका अर्थ क्या है, ये जो अंतर्मूर्त है ना, जिसका उदय नहीं है वो अंतर्मूर्त।
हाँ।
फिर भय का उदय वाले अंतर्मूर्त,
वो छोटा होगा और ये बड़ा होगा।
हुँ?
नहीं वाले का बड़ा होगा अंतर्मूर्त,
ऐसा नहीं, वहाँ दोनों को इकट्ठा लेना ना, वो संख्या, हाँ वो संख्यात्व भाग, दस और नौ को दोनों को संख्यात विभाग में ले लिया, और दोनों का ही उदय ने वो संख्यात बहुभाग ले लिया। वो तो अंतर्मूर्त छोटा बड़ा होगा ना, उसकी अपेक्षा लिया है ये, हमने मनुष्य की बात देखी थी। आनत कल्प से लेकर मिला नीचे से दूसरी लाइन, नौ ग्रेवेक तक के देवों में, देखो दस का स्थान तो रखा है परंतु आनंद से लेकर की बात है। दस नौ आठ और छह प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात विभाग प्रमाण है, दस नौ आठ तो चलो ठीक है मिथ्या दृष्टि के लिए, और छह प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात विभाग प्रमाण है। छह वाले कौन हो गए,
प्रथम
अक्षमिक और क्षायिक,
क्षायिक दोनों।
सात प्रकृतियों के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, मात्र इनमें दस प्रकृतियों के उदीरक जीव नहीं है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यानी यहाँ सात वाले जीव संख्यात बहुभाग है, अन्यत्र सर्वत्र हमने आठ वाले बहुभाग देखे थे और यहाँ सात वाले बहुभाग में ले लिए। अब तो हमने भागा भाग देखा था, अभी परिमाण देखेंगे। परिमाणानुगम की अपेक्षा, निर्देश दो प्रकार का है, वह हमने दस नंबर देखा था, यहाँ ग्यारह नंबर। प्रकृति स्थान उदीर्णा में नंबर 11। परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव कितने हैं तो अनंत है। इसमें से 8 को कितना भाग प्रमाण कहा था? संख्यात बहुभाग,
बहुभाग और बाकी के
और 10 और 9 को संख्यात भाग, फिर भी तीनों की संख्या कितनी तो अनंत है। में परिमाण और भागा भाग में डिफरेंस। 7, 6 और 5 प्रकृतियों के उदीरक जीव कितने हैं तो कहते असंख्यात है, क्योंकि सात वाले तो समय दृष्टि से शुरू होता है, तो ये असंख्यात है उसकी संख्या। 4, 2 और 1 प्रकृति के उदीरक जीव कितने हैं तो संख्यात है, क्योंकि तो मनुष्यों में वो भी संयुक्तों में होगा। आदेश से नारकियों में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं तो असंख्यात है, भले उसमें हमने जो आठ वाले संख्यात बहुभाग, दस नौ वाले संख्यात विभाग वगैरह वगैरह जो देखे थे और अन्य असंख्यात विभाग, फिर भी हरेक की अपनी अपनी संख्या कितनी है, यथा योग्य असंख्यात। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव तथा भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देवों में जानना चाहिए, जहाँ सब पदों के उदीरक असंख्यात है। इसलिए मनुष्य अपर्याप्त इतना ही लिया, सामान्य मनुष्य लेंगे तो सब पद असंख्यात नहीं होंगे, कुछ पद तो संख्यात भी होंगे, जैसे 4 है, 2 है, 1 है, वो तो संख्यात हो जाएंगे, इसलिए यहाँ अपर्याप्तों को लिया। तिर्यंचों में सब पदों का भंग ओघ के समान है, यानी वो तो अनंत घटित होता है वहां पर, और उनमें भी जो समय दृष्टि है उनके वो असंख्यात घटित होता है। मनुष्यों में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव कितने हैं तो असंख्यात है, ये तो
अपर्याप्त
सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा है, अपर्याप्तों को लेकर। शेष पदों के उदीरक जीव कितने हैं तो असंख्यात है, क्योंकि शेष पद तो पर्याप्तों के होते हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनीय और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं तो संख्यात है, वो 10 से लेकर सभी कितने हैं मनुष्यों में तो संख्यात है। सर्वार्थ सिद्धि में तो जो कुछ है वहां पर वो तो 9, 8, 7, 6 वो तो संख्यात की है हर एक। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, नंबर 12 प्रकृति स्थान उदीर्णा में नंबर 12। वैसे तो आसान है ना, ये तो उदीर्णा का प्रकरण बहुत आसान है, हम कितने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के आए ना अभी
संक्रमण
प्रदेश संक्रमण और क्या क्या नहीं देखा। तो ओघ और आदेश, ओघ से 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीवों का क्षेत्र सब लोग प्रमाण है, अनंत जीव कर रहे हैं एक इंद्रिय सहित। शेष प्रकृतियों के उदीरक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि शेष जो है वो असंख्यात है, वो असंख्यातों का क्षेत्र तो लोक का असंख्यात भाग। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए। शेष मार्गणाओं में सब पदों के उदीरक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी तिर्यंचों में ही सर्वलोक घटित होगा, देवों में, नारकियों में, मनुष्यों में लोक का असंख्यात अभाव घटित होगा। विशेषार्थ, 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव एक केंद्रीय भी होते हैं, इसलिए इनका सब लोग क्षेत्र बन जाता है, परंतु शेष प्रकृतियों के उदीरक जीव प्रायः संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं और उनका वर्तमान निवास लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए इन पदों के उदीरक जीवों का क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है। सामान्य तिर्यंचों में यह ओघ प्ररूपणा अपने पदानुसार अविकल बन जाती है, अपने पदानुसार यानी वहां जितने पद होते हैं उसके अनुसार 5 तक बन जाते हैं ना उनके, इसलिए उनमें संभव पदों का क्षेत्र ओह के समान जानने की सूचना की है। उनमें भी 10, 9, 8 के सर्वलोक में हो गए और बाकी तो लोक के असंख्यात में
भाग। 25 की बात है ना, अच्छा सामान्य तिर्यंच।
सामान्य तिर्यंच गति संबंधी शेष मार्गणाओं का क्षेत्र ही लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है। गति संबंधी शेष मार्गणा ने तिर्यंच को छोड़कर अन्य 3 गतियों, इसलिए उनमें सब पदों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। आगे की मार्गणाओं में इसी प्रकार क्षेत्र जान लेना चाहिए। अब स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। 13 नंबर ओघ और आदेश। ओघ से 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरकों ने सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्षेत्र ही सब लोक है तो स्पर्शन तो होगा ही। 7 प्रकृतियों के उदीरकों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का, त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अभी 7 प्रकृतियों के उदीरक चौथे गुणस्थान वाले भी होते हैं और वो मारणांतिक भी करेंगे, तो विहार की अपेक्षा तो 14 में से 8 भाग हमने पहले देख लिया। विहार की अपेक्षा, मारणांतिक की अपेक्षा ऊपर से सर्वार सिद्धि से मध्य लोक में आएंगे और नीचे से छठे नरक से मध्य लोक में आएंगे, तो इसलिए 12 भाग प्रमाण, ऊपर से 7 राज्यों और नीचे से 5 राज्यों।
नीचे से 6 राज्यों क्यों निकले? सातवीं पृथ्वी तो छठे राज्यों की तरह है ना।
सातवें पृथ्वी वाले मिथ्या दृष्टि मानांति करेंगे, समय दृष्टि करेंगे, सातवें नरक में समय
दृष्टि है,
इसलिए छठे नरक तक के लिए। अच्छा। तो 5 राज्य लिए नीचे।
सॉरी,
स्वर्ग की अपेक्षा 7 राज्य, नरक की अपेक्षा 5 राज्य। सातवें नरक वाले मिथ्यात्व में मरते हैं और मिथ्यात्व में ही मारणांतिक करते हैं, तो वो करने वाले कौन से होते हैं? 10, 9, 8 वाले होंगे।
7
वाले जो समय दृष्टि मारणांतिक करेंगे तो छठे नरक वाले कर सकते हैं। कहां तक करेंगे? मध्य लोक में, मनुष्य लोक में करेंगे।
सभी दृष्टि मारणांतिक करेंगे।
हाँ, तो यहाँ लोक के देखो 14 भागों में से कुछ कम 8 और 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। 6 प्रकृतियों के देखो यहाँ 12 जो लिया है ना, समय दृष्टि नहीं लेना वहां पर, 9, 8, 7 वाले सासादन वाले लेना, क्योंकि सासादन वाले तिर्यंचों में सर्वत्र जाएंगे एक राजू प्रमाण में। समय दृष्टि तो लोक के असंख्यात भाग में आएंगे, मनुष्य लोक में। तो सासादन वाले छठे नरक से मारणांतिक करने वाले उनको ले सकते हैं।
हाँ।
और ऊपर देवों में तो समय दृष्टि को ले लो, चलेगा। छह प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाल, ये 6 प्रकृतियों के तो औपशमिक है, 9, 8, 7, 6 यक्षायिक है, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन
ये
किया
है।
अब यहाँ तो नहीं मान औपशमिक वाले को नहीं होता है मरण मारणांतिक
नहीं,
और क्षायिक वाला तो
मारणांतिक करेगा तो ऊपर सर्वक सिद्धि तक
हाँ तो 7 राज्यों में आ जाएगा वो
हाँ।
तो कुछ कम 8 भाग प्रमाण में वो आ जाएगा क्षेत्र का स्पर्शन किया है शेष पदों के उदीरक जीवों ने
कुछ कम 8 क्यों बताया पहले नरक भी जाएगा तो वो तो असंख्यात संख्या
पहला
तो
नरक जो है
तो
वो तो संख्यात योजन है
हाँ, तो उसका तो 8
संख्यात योजन है
हाँ तो संख्यात अच्छा
संख्यात
कुछ कम 8
योजन है वो भाग होता नहीं एक भाग भी नहीं होता असंख्यात वाला भाग है वो
हाँ तो ऊपर का 7 और नीचे
का 8 भाग है वो बिहार की अपेक्षा ले
अच्छा बिहार वाले ठीक है
शेष पदों के उसका विशेषात फिर कल करेंगे हम या इसको फिर दोबारा लेंगे शेष पदों के उदीरक जीवन ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है यहीं रुकेंगे अभी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा देत अश्विन अश्विन
नमो ओरियंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आर्याणाम नमो वज्राणाम नमो लोहे सप्तसावणाम नमो ओरियंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आर्याणाम नमो वज्राणाम नमो लोहे सप्तसावणाम